ओम शांति। बीज रूप सबसे पावरफुल स्थिति है। शिव बाबा को हम क्या कहते हैं? सारी मनुष्य सृष्टि का या कल्प वृक्ष बीज कहते हैं ना, बीज रूप कहते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी बने, कैसे बने और बीज रूप स्थिति है क्या, इसकी गहराई में जाएंगे। चलिए, आप अभी तक जो आपको अभ्यास है बीज रूप स्थिति का, जो आपने अभी तक अभ्यास किया है, उसी देह और देह की दुनिया से परे मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, यूं कहे अशरीरी स्थिति अशरीरी आत्मा परम धाम घर में, उस अशरीरी पावर हाउस पाप से कंबाइंड। चलिए एक मिनट के लिए उससे कनेक्ट हो जाइए। मन बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। बस मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूं। बाबा ही मेरा संसार है। अभी हम सभी आत्माओं के वापस घर जाने का समय है। घर जाने का समय है कि नहीं? समय आ गया कि अभी आना है? आ गया। अभी पूरी तैयारी हो चुकी है ना। प्रकृति के पांचों तत्व और साइंस के सभी साधन सभी तैयार बैठे, और साकार बापदादा का पाठ, साकार बाबा का पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त बापदादा का पाठ पूरा हुआ, सभी दादियां चली गई, एक दादी रत्नमणि जी को छोड़ के, वो भी कर्मातीत अवस्था में है, सबसे न्यारी प्यारी है, देह से रिटैच्ड है, वर्ल्ड वार की तैयारी है चारों तरफ। तो अभी समय जाने का है ना, पर हम अभी कैसे जाएंगे? हम कैसे आए थे? अशरीरी आए थे, आत्मा परम धाम घर से आई थी, अशरीरी आई थी, और शरीर को छोड़ के जाने का समय जो है वो खाली अशरीरी होकर नहीं जाना है। हम आत्माओं को पहले हम मनुष्य से ब्राह्मण बने, अब ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से देवता बनना है, और देवता बनने के बाद फिर बीज रूप बनना है। क्योंकि अगर हमें बाप के साथ घर जाना है तो बाप बीज है ना, कल्प वृक्ष का, पूरे कल्प वृक्ष का। तो हमें भी बाबा के साथ बीज रूप बाप के साथ बीज रूप स्थिति में जाएंगे तो साथी बन के जाएंगे। बाबा जो है शिव बाबा वो परमधाम में रहता है, हम आत्माओं के लिए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में वर्तमान में विराजमान है। और शिव बाबा को कभी कोई संकल्प नहीं चलते, शिव बाबा निरसंकल्प है। कुछ भी हो जाए धरती पर उसको जीरो संकल्प चलते हैं उसको कभी कोई, इसलिए वो रहता ही संकल्पों से परे की दुनिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, निराकारी दुनिया कहते हैं, संकल्पों से परे की दुनिया, उसको जीरो संकल्प चलते हैं। और हमें कितने संकल्प चलते हैं? हमें कितने संकल्प चलते हैं बोलिए? हमें संकल्प ज्यादा क्यों चलते हैं? हमें संकल्प 15 चलते हैं, कभी 20, कभी 25, कभी 30। एवरेज इस समय हर आदमी को 25 से 30 संकल्प चलते हैं। ब्राह्मणों को लगभग 15 संकल्प एवरेज चलते हैं एक मिनट में, और आम आदमी को, मनुष्यों को तो 30 से 35, 40, 45, और 45 के ऊपर तो हम स्किज़ोफ्रेनिक बन जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें खुद को पता नहीं लगता हम क्या सोच रहे हैं, अपना ही सोचा हुआ दिखाई देने लगता है, अपना ही सोचा हुआ सुनाई देने लगता है। तो आज ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए चारों तरफ आज दुख है, परेशानी है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ना, जब से आपकी तपस्या बढ़ेगी, जब आप, बाबा ने कहा अज्ञान नींद से जागरण करेंगे और सर्व समर्पण कर देंगे, मन बुद्धि संस्कार का समर्पण करेंगे, मैंपन का समर्पण करेंगे, तब जो है क्या होगा हमारा, वो समय आएगा जब हम जो सोचेंगे, जो बोलेंगे वही होगा, वही दिखाई भी देगा। अर्थात हमारी संकल्प की स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, वो हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने लगेगा। वाणी के द्वारा बहुत सेवा हुई, म्यूजियम के द्वारा बहुत सेवा हुई, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में, मेलों के द्वारा बहुत सेवा हुई। अभी जो समय है, बाबा के जो बच्चे सत्युग में आने वाले थे लगभग वो आ चुके, अभी जो समय है वो प्रजा भी लगभग आ चुकी है, अभी जो थोड़ी प्रजा आनी बाकी है और जो भक्त आने बाकी है। हम बच्चों को तो, क्योंकि हम बच्चों का बीच से डायरेक्ट कनेक्शन था, शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन था, तो हम बच्चों को जैसे ही बाबा साकार में मिले, कुछ बच्चों को, अधिकतर हम सब जो बच्चे जो पैदा हुए वो अव्यक्त बाप दादा की संकल्पों की रचना है। अव्यक्त होने के बाद हमारा जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, और बाबा ने, जैसे ही बाबा को हमने सुना, बाबा के, बाबा से मिले या कोर्स किया, हमको तुरंत ही बाप की पहचान भी आ गई, परमात्मा की पहचान भी आ गई और समय की पहचान भी आ गई। हालांकि बहुत पहले हम लोग जैसे आए ना, मैं तुझसे बताया 68 से हमारे घर में गीता पाठशाला थी, और 86 में मैंने जब पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर मैंने रेगुलर चलना शुरू किया, जब से ज्ञान में रेगुलर चलना शुरू किया, जब से पढ़ाई से फ्री हुए तो फिर से तब से चलना शुरू किया, समझ आ गई तब तक पूरी। तो तब तक तो एक समय है हर ब्राह्मण का जन्म होने का। जैसे ही हमें परमात्मा की पहचान मिलती है, वैसे ही हमें समय की पहचान मिल जाती है, क्योंकि हम बीज रूप बाप से कनेक्टेड है। तो जो आत्माएं हमारे प्रजा है, ये हमारे भक्त आने वाले हैं, उनको उनको कब पहचान मिलेगी, वक्त की, समय की पहचान कब मिलेगी, या उनको परमात्मा की पहचान कब मिलेगी? वो देख रहे हैं विनाश, चार सब देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, किंतु फिर भी वो क्या है, अलबेले है, अज्ञान इन्हें सोए हुए, उनको लगता है शायद ऐसे ही चल फिर के लाइक बंद हो जाएगी या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अज्ञान इनमें सोए हुए, उनको वो किस बात का इंतजार है, जब हम उनके जो इष्ट हैं, जब हमारी बीज रूप अवस्था बनेगी, क्योंकि बाप तो बीज रूप था हमारा, जैसे ही बीज रूप बाप से हमारा कनेक्शन हुआ, हमें समय की पहचान में मिल गई, परमात्मा की पहचान में मिल गई। अब जो हम उनके बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे बने हैं, अब जब हमारी बीज रूप अवस्था होगी, तब उन आत्माओं को, जो प्रजा, लास्ट की प्रजा और जो भक्त आत्माएं हैं, तब उनको परमात्मा की पहचान मिलेगी, तब उनको समय की पहचान मिलेगी, तब वो ज्ञान नींद से जाएंगे, तब जय जयकार होगी, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जब हमारे मस्तक से मैं ना दिखाई दूं, मैं अपन, मेरापन खत्म हो जाए बिल्कुल, और मेरे मस्तक से, मेरे चेहरे और चरण से पाप दिखाई दे, जब ऐसी स्थिति होगी तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, राइट? यस। तो प्रत्यक्षता किसके लिए रुकी हुई है? आखिरी लड़ाई किसके लिए दुखी हुई है? इसलिए दुखी है ना, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं बनी है। जो बाप के साथ जाना चाहते हैं, बीज रोपण के हाथ उठाओ। कुछ लोग आधा जाना चाहते हैं, पूरा जाना चाहते हैं। कुछ लोग हाथ नहीं उठाया, बाप के पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। तो बीज रूप स्थिति कैसे बने, है ना? बीज रूप क्या है? हमने सभी ने सुना देहमान स्थिति, आत्ममान स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीर स्थिति, निराकार स्थिति, सुना है ना सभी ने? और बीज रूप स्थिति भी सुना। तो क्या फर्क है सब में? हमने ये भी सुना साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, साइलेंस पावर के पास सुना ना हमने। तो क्या है वो स्थिति, कैसे बने हमारी वो स्थिति? और कैसे हम, बाबा ने कहा अंत में ये जो आपका साकार वतन है, यही अव्यक्त वतन बन जाएगा, यही सूक्ष्म वतन बन जाएगा। चलते फिरते हर समय कार्य करते आपके से होंगे, सूक्ष्म वतन वासी बन जाएंगे। ये दुनिया ही साकार दुनिया, अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। और अंत होते होते यही दुनिया क्या बन जाएगी? यही हमारा निराकार वतन बन जाएगा। निराकार सो साकार, साकार सो निराकार बन जाएंगे। वो समय भी आने वाला है, राइट? और जब हम, या मैं दूसरी भाषा में कहूं, जो हमारे पाप कर्म है, जो भी हमने 63 जन्मों से पाप कर्म किए हैं, उसके कारण हमारे पास जो फरिश्ते और देवता होते हैं, उनका 100% मन कॉन्शियस होता है, चेतन मन होता है। इसलिए उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। वो जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हो जाता है। वो सिद्धि स्वरूप होते हैं। उनको कभी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं आ सकता। जो सोचेंगे वो हो जाता है। प्रकृति दासी होती है। अभी क्यों नहीं होता है? अभी क्यों विचार की स्पीड फास्ट है? क्योंकि जो भी हमने 20वें 21वें जन्म के बाद जो जन्म लिया, उस जन्म में जो पाप कर्म किए, सत्य चेता में हमारा मन 100% कॉन्शियस था। जैसे ही हमने 21वां जन्म लिया, 22वां जन्म लिया, तो हमने उस जन्म में जो देह अभिमान आ गया था, उसके कारण हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया था, और उनके अंश और वंश का आलस अलबेलापन, दोष दर्शन बदलने की भावना आने लगी थी, ईर्ष्या द्वेष आने लगी थी, चिंता भय पैदा होने लगी थी। तो जिसके कारण पाप कर्म, पांच विकारों के वशन में कर्म किए, तो उससे हम पाप कर्म बनने शुरू हुए। वो हम एक सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण हुआ। जो फाइलें हम सेव, जो हमारी दिल मानती नहीं थी, वो फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगी। सबकॉन्शियस माइंड बना पहले जन्म का, चित कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में चित कहते हैं। और चित के अनुसार साकार चेतन मन में चिंतन चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप मुरली सुनी हमने आज सुबह की, कितनी वंडरफुल मुरली थी। भूकंप आया था 26 जनवरी को, उसके बाद 2 तारीख को चली, फिर 20 तारीख 20 फरवरी को मुरली चली थी। तो बाबा ने कितना सुंदर, आज गुजरात की आत्माओं का हजार बुझाओ वाला बुझ में जो सेंटर था, कुछ भी उसका नुकसान नहीं हुआ। सबके सब योग में बैठे थे, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो समय बाबा उसको याद कर आज बता रहे थे कि कैसा बाबा, अगर सचमुच में हम ऐसी स्थिति में होंगे, हमारी स्थिति स्वस्थिति अचरअडोल होगी, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, और हमारा मन क्लियर होगा, तो कुछ भी हो जाए, भले भूकंप आ जाए, कितना भी 10 रिश्टर स्केल का भी आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाएंगी, भले साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, तो भी बाबा हमको सेफ्टी की जगह पर ले जाएगा। वॉइसलेस की तार हमको बचाएगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी, हम समय पर वहां से हट जाएंगे, हम ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, बाबा ने कहा जैसे मधुबन घर एसलम है ना, यहां पर आ जाएंगे, या जो भी बना फला सब जगह रिट्रीट सेंटर बने वहां पहुंच जाएंगे, वहां योग संगठन में योग बल ऐसी अकेले से नहीं होगा, संगठन का योग बल हमारे ऐसी रक्षा कर देगा। शरीर तो हम भी छोड़ेंगे किंतु कैसे छोड़ेंगे, दब के नहीं छोड़ेंगे, दबेंगे नहीं, इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, बाबा के साथ जाएंगे, राइट। ऐसे जाना, दब के जाना, दबना मकान के नीचे दबना, दबना तो नहीं, जिनको दब के शरीर छोड़ना हाथ उठा। तो ओम शांति। तो मैं आपसे बात कर रहे थे कि हमें क्यों नहीं हमारे संकल्प कंट्रोल में आते हैं। हमें जाना तो बाबा के साथ है, बीज रूप बन करके बाबा को संकल्प जीरो है, तो हमारे संकल्प कितने होने चाहिए। बीज रूप माना जैसे 0.01 संकल्प, 0.001 चले तभी तो जीरो के साथ जाएंगे ना। अगर हमारे 5 संकल्प भी चल रहे होंगे तो हम जा सकेंगे, 4 संकल्प 3 संकल्प भी होंगे तो बाबा के साथ नहीं जा सकते, साथ ही बन के नहीं जाएंगे, पीछे 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 आना पड़ेगा, है ना। 2 संकल्प भी होंगे तो नहीं जा सकेंगे बाबा के साथ, क्यों, अंतिम स्थिति हमारे बीज रूप होनी चाहिए। अश्री स्थिति माना 1 संकल्प, 1 से कम, 0.9, 0.8, 0.7, 0.9 से लेके 0.1 तक, और निराकारी माना 0.1, 0.01, और फिर निराकार अश्री बीज रूप माना 0.01 से लेके 0.1 से लेकर के 0.000 कितने भी आगे, वो स्थिति जिसमें कोई संकल्प का नामो निशान ना हो, बस मैं आत्मा एकदम संकल्पों से परे, बाबा ही मेरा संसार है, बस बाबा के साथ इतने समाए रहे हर समय, बाबा से कमाई रहे सर्व संबंधों की महीन साल वाली याद के साथ, ऐसी स्थिति बन जाए। तो ये हमारे संकल्प क्यों इतने ज्यादा चलते हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा था कि जो 22वां जन्म हमारा शुरू हुआ तो 21 जन्म तक तो हमारे संकल्प, जो संकल्प आता था वो सिद्ध हो जाता था, अर्थात ड्रामा के अनुसार ही संकल्प चलता था, जो होने वाला था वही संकल्प हमारे मन में आता था, हम वही कर्म करते थे। 22वें जन्म में हमारे को क्या विकार के वश कर्म होने लगे, तो हमारे गलत काम होने लगे, वो सारे गलत काम जो गलत थे वो सब कॉन्शियस चित्त में जाने लगे, जिससे हमारा चित्त हमारा अशांत चंचल बेचैन रहने लगा, और चिंतन हमारा स्पीड फास्ट हो गए। पहले चिंतन था एक्यूरेट, फिर चिंतन ज्यादा हो गया चेतन मन में, और संकल्प मतलब संकल्प ज्यादा चलने लगे, तो फिर हमारे कार्य सिद्ध होने बंद हो गए। हम भले सोचते रहते थे कार्य नहीं होता था, ये द्वापर युग से शुरू हुआ। तो 22वें जन्म में जो हमने और सपने आने शुरू हुए, चित्त से जो हम जो गलत काम करते जो सोने जाते थे, चेतन मन सो जाता था और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड चालू से फाइलें खुलने लगती, उससे सपने आने शुरू हुए। सत्य सत्यता में सपने नहीं आते, देवताओं को सपने नहीं आते थे। तो सपना जब हमने 23वां जन्म लिया तो 22वां जन्म के जो सबकॉन्शियस माइंड था वो अनकॉन्शियस माइंड बन गया, और उसके आधार पे हमको 23वां जन्म मिला, राइट। तो 22वां जन्म का अनकॉन्शियस माइंड और 1 जन्म का सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है ना। 23वें का दूसरा सबकॉन्शियस माइंड बना, उसके आधार से जीवन चला। फिर 24वें 22वें 23वें का अनकॉन्शियस माइंड और 24वें का सबकॉन्शियस माइंड, और ऐसे होते 63 जन्म आ गए हमारे। इसमें क्या हो गया, 62 जन्म का अनकॉन्शियस माइंड और 1 जन्म का सबकॉन्शियस माइंड। हालत ये आके पहुंची कि अब 97% मन हमारा, जो 97% मन कितना हो गया मनुष्यों का, अनकॉन्शियस है सबकॉन्शियस है, उससे 3% मन कॉन्शियस मन है, समझ रहे हैं आप। अर्थात 3% ही मेरा कंट्रोल है मेरे मन पर, मेरे विचारों पर। इसलिए हम सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, आपने देखा होगा, हम सोचते हैं कि सारा दिन मुरली का चिंतन चले। आप योग भट्टी में है तब भी आप देखो सुबह से कितनी देर मुरली का चिंतन चला आपके अंदर, कितना चला है, चला ऑटोमेटिक मुरली अंदर चली है, मनन चिंतन मंथन सिमरण हुआ है? नहीं हुआ, क्यों? चित्त अशांत चंचल और बेचैन है, बातों का चिंतन चलता है। यहां बैठे बैठे भी बट्टी में आने के बाद भी चिंतन अभी भी कौन सी बातों का चलता है? कभी देह का, कभी देह के संबंध संपर्क आ जाएंगे यहां बैठे बैठे, हालांकि यहां कोई है नहीं। कभी देह के पदार्थ याद आएंगे, कभी खाने पीने का टाइम याद आएगा, आज शाम को क्या बना है, क्या करना है ना, और कुछ ना कुछ वो बातें याद आएंगी। आती नहीं आती? भट्टी में तो हमारा एकाग्र बुद्धि होनी चाहिए, खाली बाबा और मुरली होनी चाहिए, नहीं, एक रस स्थिति होनी चाहिए, एक टिक स्थिति क्यों नहीं होती है? हम 88वें साल में चल रहे, रोज मुरली सुनते हैं, बाबा ने कहा बार बार पापा रिवाइज क्यों करता है, वही बात है। तो ये अभी हमारे अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब तक हम ये इस जन्म का चित्त सबकॉन्शियस माइंड खत्म नहीं करेंगे, उसमें इस जन्म में जो हम विक्रम विनाश करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक विक्रम हमसे होने बंद नहीं हुए तब तक, अभी भी हमसे विक्रम हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो पाप कर्म जो हमने किए वो आज भी हमसे, बाबा को भूलना ही पाप कर्म है, नहीं है? बाबा को भूलना ही पाप कर्म है, अपनी स्मृति भूल जाना, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, बाबा ने कहा ना, इस मैं को भूलना ही ब्राह्मण जीवन की शुरुआत है। मर्जीवा जन्म है, कि तो मर्जीवा जन्म कहने को है कि सचमुच में है? देवभान देवाभिमान, जब बाबा ने कहा सूक्ष्म देवभान का मैपन है ना, किसका संबंध संपर्क का मैपन, फिर पोजीशन का मैपन, क्या ले जाता है हमको एकदम ऊपर से नीचे, ले आता नहीं ले आता? फिर उसके बाद ब्राह्मण जन्म में हमें क्या मिला? ज्ञान मिला, उसको भी हमने क्या समझ लिया? अपनी अपनी विशेषता समझ ली, जबकि क्या थी? परमात्म देन थी, है ना, उसको भी अपनी विशेषता समझ ली, वो भी मैपन आ गया, है ना, राइट। तो ये बहुत गंभीरता से समझना है कि हमको ये मैपन और मेरापन खत्म हो जाए बिल्कुल, तो क्या करना पड़ेगा? हमको चलते फिरते उठते बैठते सूक्ष्म वतनवासी बनना है, यहां पर उठते बैठते। बाबा ने कहा ना, सहज सहयोगी से क्या, सहज योगी कर्म योगी और फिर निरंतर योगी, क्योंकि ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम आत्मा जब तक शरीर में है, हमारा हार्ट 1 मिनट 70 बार चलता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में 0.85 सेकंड में हार्ट हमारा बीट करता है, सुकुड़ता भी फैलता है 1.85 सेकंड में, और हमारी हर सेल में 1 लाख रिएक्शन हो रही है 1 सेकंड में। कितनी रिएक्शन हो रही है? 1 लाख, 100,000 रिएक्शन एक सेल में। हमारा शरीर 70 से 80 हजार कोशिकाओं से बना हुआ है, तो जब तक ये आत्मा है तब तक हो रहा है, आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है एक भी रिएक्शन नहीं होती है, तो आत्मा तो बिना कर्म के 1 सेकंड भी रह नहीं सकती है, 1 सेकंड भी कितना कर्म हर सेल के अंदर हो रहा है। अगर हम कर्मयोगी बन जाए, जज बाबा ने कहा सहयोगी सहजयोगी कर्मयोगी, तो निरंतर योगी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो उसकी विधि हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमारे संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट, इसी कारण से जो पाप कर्म किए ना, और रात में हम सोने जाते हैं, रात को सोने जाते हैं तो हमें सोते ही लेटते ही क्या होता है, सपने आने शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर में, और सपने बेचैन कर देते, नींद सुबह फ्रेश नहीं होते, ज्यादा सपनों वाली नींद आती है, तो सुबह अमृत वाला पावरफुल नहीं होता, जबकि अमृत वाला बहुत पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल समय सत्वप्रधान समय। तो इसमें तो हमें बीज रूप स्थिति में टिक करके अपनी और बीज रूप आपसे कंबाइन होकर सारे कलर विश्व सकाश देना चाहिए, सभी सत्युग त्रेता द्वापर युग, द्वापर और कलयुग की सभी आत्माओं को बीज से पानी मिलता है ना, बाबा से कंबाइन होकर सारे कलर विश्व को हर आत्मा तक हर पत्ते तक पानी पहुंच, पानी कौन सा? ज्ञान का पानी, या कहें लाइट, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट और आठों शक्तियों की माइट हर पत्ते तक, हर आत्मा तक पहुंचनी चाहिए, राइट, ताकि वो आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सके, संपन्न संपूर्ण स्थिति की, सत्युग की आत्माएं हो, चतुर्यता की हो, और द्वापर कलयुग की आत्माएं भी अपनी जो उनके अंदर भी इच्छा जागृत हो कि हमें वापिस घर जाना है, वापिस घर जाने का समय है, समय की पहचान उनके अंदर आ जाए, परमात्मा की पहचान की उनके हिम्मत की टांग उठे, वो घर आए, बाबा के घर में आए, समझें ज्ञान को, राइट। भले वो सत्य चरित्र नहीं आएंगी तो आप कलयुग में आएंगी, फिर भी उनका उस तरफ अटेंशन बने, तो वो हमें कैसे करना है? देखिए मैं आपको सूक्ष्म इसके तरीका बता देते हैं, क्योंकि अभी हम सभी देहाभिमानी थे मनुष्य के रूप में। बाबा मिला हम ब्राह्मण, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको दिव्य, ब्रह्मा मां के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और दो हमें बर्थडे गिफ्ट, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दो बर्थडे गिफ्ट दे दी हमको। कौन कौन सी दे दी? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। तो जब मनुष्य होते हैं उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती है, उनके पास स्थूल दृष्टि, तो इससे क्या देखते हैं वो? देवान, देवीमान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ, और देवीमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, राक्षसों के स्वभाव। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये उनकी नेचर है असुरों का, राक्षसों का। तो अभी देखो हमारे अंदर है कि इनकांश है? है। और जब पांच विकारों के वश होकर कर्म करते हैं तो हमारे अंदर आसुरी संस्कार पैदा होते हैं। आलस्य आसुरी संस्कार है, अलबेलापन आसुरी संस्कार है, राइट। दूसरों के अवगुण देखना यह आसुरी संस्कार है, बदलने की भावना रखना यह आसुरी संस्कार है, किसी पे शक करना, निश्चय नहीं करना, शक करना, यह बदल नहीं सकता है। आज बाबा ने कहा ना, प्रकृति बदल सकते हो, आत्मा नहीं बदल सकती है। किसी पे शक करना, सर्टिफिकेट देना, ये आसुरी स्वभाव है। शक करना, अनुमान लगाना आसुरी स्वभाव है। चिंता करना आसुरी संस्कार है, स्वभाव नहीं संस्कार, आदत है। डरना आसुरी संस्कार है, आदत है। और जल्दबाजी करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, आसुरी संस्कार है, आसुरी आदत है। मेरे जैसे मैं को वैसे ही होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन की भावना आना, ये आसुरी संस्कार, आसुरी आदत है, और ईर्ष्या द्वेष ये आसुरी आदत है। जब हम अब हमको ब्राह्मण बन गए हम, तो अब हमको इन नेत्रों से नहीं देखना है, दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि से देखो, अपने आप को देखो, मैं स्थूल दे रही, ये स्थूल देखो चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो, चलते फिरते उठते बैठते यही कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना, ये पहली पहली स्टेज है हम ब्राह्मणों की। हम दिव्य दृष्टि से अपने आप को देखें और दूसरों को भी दिव्य दृष्टि से देखें, उनको चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, दोस्त हो, बॉस हो या सबॉर्डिनेट हो, आया हो, घर में नौकर चाकर हो, पीएन हो, किसी को भी देखें, सड़क पर भी देखें, तो उसके भी सत्य स्वरूप को देखें, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता को इमर्ज करके, अपने भी स्वरूप को इमर्ज करें, उनके भी स्वरूप को इमर्ज करके फिर व्यवहार करें, और अपने को सदा उस परमात्मा पिता से कंबाइन, सर्व संबंधों की मही सार वाली याद से कंबाइन। बाबा ही मेरा संसार है, क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ उससे चार्ज होती है। उस कंबाइंड स्थिति से हम अपने आप को देखें और उस कंबाइंड स्थिति से अपने आप को कंबाइंड होकर के सोचें, कुछ भी सोचना है कंबाइंड होकर सोचें, कंबाइंड होकर निर्णय करें, कंबाइंड होकर के देखें, कंबाइंड होकर के ही हम कुछ पढ़ें, कंबाइंड होकर इसको सुने, कंबाइंड होकर ही श्वास लें, कंबाइंड होकर ही कुछ सुनना तो सुने, कंबाइंड होकर ही बोले, और कंबाइंड होकर ही हम खाएं। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। तो हमें अगर बीज रूप स्थिति बनानी है तो पहला पहला हमें क्या बनना पड़ेगा? अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, राइट? यस, पक्का। बाह्यमुखता छोड़नी पड़ेगी, टीवी, मोबाइल, ये क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये सब छोड़नी पड़ेगी, राइट। और बाबा ने कहा था एक बार एक मुरली में, अगर हमें बाप से करंट खींचनी है तो तीन मुख्य चीजें चाहिए, धैर्यता, गंभीरता और सहनशीलता। इस रास्ते पर तीन चीजें बहुत जरूरी है, पेशेंस, धैर्यता, क्योंकि 63 जन्मों के पाप कर्म है, टाइम लगता है। धैर्यता के साथ और गंभीर सीरियस होकर काम करना, कैजुअली नहीं, आधा घंटा कर लिया, टीवी चल रहा है, मोबाइल पे टीवी मुरली सुन ली, टीवी पे मुरली सुन ली, नहीं, सेंटर पे जाकर के विधि पूर्वक टाइम पर मुरली सुनो, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो, फिर सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन, जो बाबा ने कहा वो हमारा होमवर्क है, मुरली में सुना वो होमवर्क है, तो उसको हम सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन से मनन करें, और सोने के बाद सच्चा सच्चा समाचार बाबा को दें। आज बाबा ने कहा हमारा जीवन कैसा है, पवित्र आहार, हमारी जो मर्यादा है, नियम मर्यादाएं हैं वो हमें एक्यूरेट हमें चले तो कैसे चलेंगे, पवित्र आहार हो हमारा, ये हमारी अंतर्मुखता की शुरू में शुरुआत में भी समझना है ये बात। अगर सचमुच में इस रास्ते पे चलना है तो हमें हमारा पवित्र आहार, पवित्र भोजन, पवित्र अन्न, तो पवित्र अन्न से फिर पवित्र मन बनेगा, विचार, पवित्र विचार। बाबा ने कहा पहले पवित्र आहार का, फिर क्या कहा पवित्र विचार, तब पवित्र विचार चलेंगे, तब मन हमारा टीम पॉजिटिव होगी, और जब टीम पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, फिर आत्मा से जो हम परमात्मा, मन क्लीन और क्लियर होगा है ना, टीम पॉजिटिव होगी तो परमात्मा से हमारे अंदर वो करंट आ पाएगी, तब हम पवित्र व्यवहार होगा, व्यवहार माना हमारे व्यवहार में सत्य की समझ वाला व्यवहार, पवित्रता वाला व्यवहार, शांति वाला व्यवहार, प्रेम वाला व्यवहार, अत्यंत सुख आनंद वाला व्यवहार, और सर्वशक्तियों से भरपूर व्यवहार, तब पवित्र व्यवहार होगा। और जब पवित्र व्यवहार होगा तो पवित्र विहार होगा, पवित्र विहार माना हमारे से वाइब्रेशंस, हमारे से जो वायुमंडल बनेगा, वृत्ति बदलेगी, भावना शुभ कामना और शुभ वाइब्रेशन, हमारी शुभ वृत्ति होगी, तो वृत्ति से हमारे अंदर आसपास वायुमंडल बनेगा और हमारी दृष्टि बदलेगी, तब जाकर के और उसमें ही हम सैर करेंगे, उसी वायुमंडल में नींद करेंगे, जहां भी जाएंगे वो रूहानी वायुमंडल हमारे साथ जाएगा। तो जब हमारी ऐसी स्थिति होगी, चार नियम और चार मर्यादाएं जब परफेक्ट होगी तो क्या होगा, तब हमारे अंदर दिव्य ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण माना उसमें तीन चीज छिपाई समाई हुई है, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि, मां माना मन, मन माना भव, और ना माना विष्णु जैसे संस्कार, माना सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधन। अर्थ ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि से मन मना भाव द्वारा फरिश्ता सो देवता बनने वाले, मन मना भाव से ना माना विष्णु वाला ना है ना ब्राह्मण में, तो फरिश्ता सो देवता या देवता ब्रह्म, मतलब जो फरिश्ता सो मध्याजी भाव, फरिश्ता मध्याजी भाव, तो ये हमें मन मना भाव मध्याजी भाव, तो हमारी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब कैसे होगा, हमें क्या करना है, तो हमारी जब दिल में हमारे सिर्फ बाबा होगा, हमारी दिल सच्ची और साफ होगी, अगर सचमुच में बीज रूप स्थिति को प्राप्त करना है, हमें बाबा के साथ जाना है, तो दिल में मेरे एक बाबा ही होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट है, मन के भी चार एस्पेक्ट है। बुद्धि का पहला एस्पेक्ट, ये दिल तो फिजिकल दिल है, बॉडी का दिल है, आत्मा का दिल, सच्ची दिल माना जिस दिल में बाबा के सिवा दूसरा कोई ना हो, बाबा ही मेरा संसार है, ये दिल में ना देहभान हो ना देहभिमान हो, इस सूक्ष्म में तीसरी आंख से देख रहे हैं हम, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तो दिल में बस बाबा है, मैं हूं एपीसीडी आत्मा, या एबीसीडी आत्मा, बाबा सर्व संबंध बाबा के साथ, ड्रामा में फुल स्टॉप, ड्रामा को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिके, परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर के हर कर्म करे। दिल में सत्य जब होगा और सच्ची दिल माना, सच्ची दिल में बाबा के साथ कोई दूसरा ना हो, और साफ दिल माना जिस दिल में क्या हो बाबा की श्रीमत के अलावा दूसरा कुछ ना हो, बाबा की मुरली के अलावा कुछ और ना हो, इधर से सुनो उधर से सुनो, उसने क्या कहा नहीं, जरा भी मनमत परमत का अंश भी ना हो। मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, मैं आपको 99 बात ठीक सुनाई, बाबा की सुनाई, एक बात मैंने आपको दुनिया भी सुना दी, तो क्या होगा, आप कौन सी बात पकड़ेंगे, कौन सी बात पकड़ेंगे, वो श्रीमत वाली बात नहीं पकड़ पाएंगे, कौन सी बात पकड़ पाएंगे, 1% जो मैंने कहानी सुनाई ना आपको शुरू में, कहानी सुनाई वो कहानी याद रह जाएगी, वो परमत वाली बात, मनमत परमत वाली बात रह जाएगी, गुरुमत वाली बात याद रह जाएगी, वो बात याद है, बाकी सारी जैसे मैं एक गिलास दूध में 300 ml दूध है, उसमें मैंने एक बूंद झाड़ मिला दिया, तो क्या बन गया, वो क्या बन गया, तो श्रीमत मन साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की श्रीमत के अलावा, बाबा की मुरली के अलावा जरा भी कोई और दुनियावी बात ना हो, राइट। हमें कोई एग्जाम्पल देने की भी आवश्यकता नहीं है, बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया वो ठीक है। हमारे लिए एग्जाम्पल कौन है? सैंपल कौन है? ब्रह्मा बाबा। हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया शिव बाबा से कंबाइंड है ना, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, बस। निराकार आत्मा बन के निराकार बाप से कंबाइंड रहते हुए, और फिर कहते दिल में मस्तक में शिव बाबा को बसा लो, आंखों में ब्रह्मा बाबा को बसा लो। यहां पे बाबा से आत्मा बन के बाबा से कंबाइंड रहो, और आंखों से बस ब्रह्मा बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने हो, सोचने में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, हर चीज में ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे साथ हो। और कोई व्यक्ति हमारे सामने आदर्श नहीं है, एक ब्रह्मा बाबा परफेक्ट फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी मुझे बनना, राइट। तो हमें क्या करना है? तो जब दिल सच्ची साफ होगी तो क्या होगा, हमारा दिल में बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य और निस्वार्थ प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर है। तो जब ऐसा हमारे अंदर पवित्रता माना, मैं अपने सत्य स्मृति के उसके सत्य सुख को इमर्ज करके व्यवहार करना, शांति माना पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य सत्य में टिक जाओ, परम सत्य बाप से कमांड होकर कर्म करो। प्रेम माना जो भी मेरे आसपास, मेरे घर में या बाहर जो भी व्यक्ति हैं, भाई बहन या पति पत्नी या जो भी हैं, साथी हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, उन सबको उनके हर रोल के साथ दिल से सम्मान से स्वीकार करना, उनकी बराबर पालना करना, गाली देने वाले की भी और महिमा करने वाले की भी, उसको बोलते प्यार। क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार मेरे साथ आए हैं, उसको बोलते प्यार। तो जितना बाबा के साथ का अनुभव करेंगे दिल में, उतना प्यार, जैसे बाबा प्यार का सागर है, हम भी सबको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो हम मास्टर प्यार के सागर बनते जाएंगे, राइट। और जब ऐसा प्यार सारे विश्व से हो जाएगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, तब बाप दादा के साथ का अनुभव होगा। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अगर मैं इस भाषा में कहूं कि सूक्ष्म वतन में बाप दादा बैठे हैं, अगर उनके पास जाना है, सूक्ष्म वतनवासी बनना है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट हमको मिली है, जितना इस दिव्य दृष्टि को यूज करेंगे तीसरी आंख को, उतना हमारी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाएगी। और ये बुद्धि, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को एक सेकंड से भी कम समय सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देगी, राइट। तो ये कैसे होगा? इसका जैसे आपको कहीं जाना हो तो क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट चाहिए होता है, विदेश में जाना हो तो यस चाहिए, नहीं चाहिए? और क्या चाहिए होता है? वीजा चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? टिकट चाहिए होती है आने जाने की, और फिर वहां रहना है तो वहां रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए ना। तो अगर सूक्ष्म वतन में जाना है, यहां रहते सूक्ष्म वतनवासी बनना, हमारा एम तो बीज रूप का मतलब क्या, परमधाम निवासी है ना, बीज रूप बना परमधाम निवासी बन के रहना यहां रहते हुए। पहले सूक्ष्म वतन की बात कर रहे थे, तो पहला है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट बाबा की मुरली है। ये जो बाबा की मुरली ना, आज की मुरली जैसी थी, ये बाबा की मुरली जो है पासपोर्ट है। कागज के रूप में नहीं कि कागज के रूप में बाबा की मुरली पासपोर्ट है, नहीं, जो बाबा ने जो मुरली सुनाई है आज की, उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन वो होमवर्क है। उसको जब दिल में जब बाबा है, वो बाबा ने मेरे जो सब सर संबंधी है उसने मुझे सुनाया है। जो जिससे जो सर संबंधी होता है उससे बहुत प्यार होता है, दिल का प्यार होता है। याद किसकी आती है? जो दिल में होता है वो भुलाए नहीं भूलता है, जो दिल में नहीं होता उसको याद करना पड़ता है। अगर बच्चा जो आपके दिल में बैठा है तो आपके दिल में बच्चे की याद आएगी, यहां बैठे बैठे बाप की याद नहीं आएगी, उसको याद करना पड़ेगा। वो बच्चे को निकाल के दिल में किसको बिठाओ? बाबा को बिठाओ। वो सच्चा संबंधी है, सर्व संबंधी है। तो बाबा को दिल में बिठाया तो सच्चे दिल से जब बाबा बैठा है तो बाबा की बात बार बार याद आती है। बाबा ने आज ये कहा था, बच्चे आज बाबा तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, वंडरफुल जन्मदिन है ना। तो बाबा ने आज बताया कि बच्चे कैसे जागरण, अज्ञान नींद से जागरण हो गया, तुम आत्मा हो, तुम मेरे साथ हो, सदा मेरे साथ हो, मैं सदा तुम्हारे, मेरी बुद्धि में सिर्फ तुम हो। बाबा ने क्या कहा बच्चे आज? बाबा ने कैसे कहा? एक बात बुद्धि में बजनी चाहिए। मन ही मन में बार बार रिवाइज करो, सच्चे दिल के स्नेह से रिवाइज करो। फिर रिवाइज करते करते बार बार रिवाइज करो ना, एक मुरली के बाद तो 10-10 बार लाइन पढ़ेंगे ना हम लोग, 20-20 बार लाइन पढ़ते, तो क्या होता है, रिवाइज करने से फिर रियलाइज होने लगे। रियलाइज में ना सच्चे दिल से महसूस करो, आज की मुराबा में कहा सच्चे दिल की महसूसता, विवेक की महसूसता नहीं, दिमाग की महसूसता नहीं, सच्चे दिल की महसूसता कि बाबा ने आज एक काम कहा बच्चे, मैंपन का बिल्कुल समर्पण कर देना, मन बुद्धि संस्कार का बिल्कुल समर्पण कर देना, सर्व समर्पण करना, बिल्कुल सब कुछ बाबा का है, ये मन भी बाबा का है, संकल्प भी बाबा के अनुसार चलेगा, पुरानी आदतें कोई भी नहीं, पुरानी आदतें भी सब बाबा को समर्पण कर दे, बुद्धि भी बाबा को समर्पण कर दी, मैंपन समर्पण कर दिया, अब बाबा जैसे कहे वैसे करना, मुझे हर चीज बाबा से पूछ के करनी है, राइट। तो चिंतन चला सच्चे दिल की लगन से, जो बाबा ने आज कहा, या यूं कहूं ABCD का, ए और बी, आत्मा और परमात्मा का, क्या चलो उसके गुह्यता में चले जाओ, आत्मा कैसे यहां बैठ के सारे शरीर को चला रही है, परमात्मा कैसे ऊपर बैठ के सारे संसार को चला रहा है, आत्मा कैसा सात एनर्जी है, चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं है, आत्मा कैसे मन के माध्यम से शरीर को सात एनर्जी दे रही है, कैसे वंडरफुल करते से हमारा शरीर काम कर रहा है, एक्यूरेट काम कर रहा है, कैसे बुद्धि काम करती, कैसे संस्कार, फिर हमें संस्कार क्यों भटका देते हैं बीच बीच में, पता है तो भी भटका क्यों देते, पुराने संस्कार कैसे कब हावी हो जाते हैं, गहराई में उतर जाओ, परमात्मा कैसे मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। फिर गुह्यता के बाद रहस्य में जाओ कि परमात्मा को जानता हूं मैं, परमात्मा समझ गया, परमात्मा मुझे अडॉप्ट भी कर लिया कि तू मुझे करंट कैसे खींचनी है बाबा से, उसकी रहस्य सीक्रेट क्या है, करंट खींचने का सीक्रेट है सर्व संबंध, मेरा एक भी संबंध किसी और देहधारी से है ना तो मैं बाबा से करंट नहीं खींच सकता हूं। नौ के नौ संबंध, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चा, जब तक नौ संबंधों से मैंने बाबा को यूज नहीं किया है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, ना डॉक्टर की याद आए, ना बच्चे बेटे की याद आए, युगर की याद आए, ना किसी और की याद आए, किसी बहन भाई की याद आए, नहीं, बस कुछ भी हो जाए बाबा की याद आनी चाहिए और बाबा को यूज करना चाहिए, उसकी अथॉरिटी बनना पड़ेगा, राइट, तब मैं करंट खींच सकता हूं बाबा से। और राज क्या है, ये ड्रामा का राज, मेरे से ये समस्या क्यों आती है बार बार, मेरी बुद्धि बार बार क्यों भटक जाती है, वो व्यक्ति आता तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो जाता है, ये राज क्या है, इसके सीक्रेट क्या है, इसके पीछे राज यही है कि मेरे को पिछले जन्म को हिसाब किताब है, ये आदमी मुझे रोज तंग करता है, रोज तंग करती है, क्यों करती है, मैंने तंग किया हुआ है, अब ब्याज के साथ वापिस तंग कर रही है, ये व्यक्ति मुझे धोखा क्यों दे रहा है बार बार, क्योंकि मैंने धोखा दिया हुआ है, अब ब्याज के साथ वापिस कर रहा है, इससे मुझे सहन के समान आए, इससे मैंने कहा धैर्यता गंभीरता और सहनशीलता, इस रास्ते में सहनशीलता बहुत जरूरी है, रिएक्शन नहीं करनी है, क्या करनी है, सहन करके समाना है उसको। तो मैंने गुह्यता, एक एक महावाक्य की गुह्यता में, रहस्य में और राज में मगन हो जाओ, चिंतन, ये चिंतन है दिल में बुद्धि में मन में और तन में, ये क्या हो जाए, ये दिल में भी वही बाबा है, दिल में बाबा है तो क्या होगा, बुद्धि बुद्धि में ना अब मेरा विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति दिव्य है, दिव्य बुद्धि एक्टिव हो गई, राइट, और मन मन में विचिंतन चलना शुरू हो, चिंतन मन में चलता है ना, संकल्प चलने शुरू, भावना, संकल्प को गहराई से किया है तो भावना आ गई, भावना से वाइब्रेशन निकले, उसी भावना में रह रहा हूं तो पंखा चल रहा है ना, जैसे दिखाई देना बंद हो गया, पंखा चलता है ना, तीन तीन पंखुड़ी दिखाई देती है क्या, पंखुड़ी, एक वायुमंडल बन जाता है ना, और उसमें ठंडी हवा आने लगती है, सेम वे अब मेरे अंदर वही चल रहा है, बाबा का महावाक्य चले जा रहा है, चले उसी में, उसी भावना में मैं, बाबा ने मुझे कहा बच्चे तुम्हें ऐसा बनना, बच्चे तुम तो मेरी नैनों के नूर हो, तुम मस्तक मणि हो मेरी, मुझे तुम्हें ऐसा बनना है बच्चे, मैं तुम्हें साथी बन के जाना है, मेरे साथ जाना है ना बच्चे, तुम्हें विश्व राज्याधिकारी बनना है, लास्ट संडे की मुरली, स्वराज्याधिकारी सो लाइट के ताजधारी, लाइट का क्राउन और भविष्य के विश्व राज्याधिकारी, तो मतलब वो बाबा से जैसे अंदर से बस लगन लग गई ना, तो अब क्या है, मन में वही संकल्प भावना वृत्ति दृष्टि और वायुमंडल बदल गया, उसमें क्या है, कौन सा वायुमंडल बन गया, पवित्रता का वायुमंडल, ज्ञान का वायुमंडल, पवित्रता का वायुमंडल, शांति का वायुमंडल, सत्य प्रेम का वायुमंडल, अतिंद्रिय सुख आनंद का वायुमंडल और सर्वशक्ति का वायुमंडल बन गया, बाबा ने कहा वायुमंडल वाइब्रेशन संघ, से क्या करो, दूसरों की सेवा करो, तो आज की मुरली थी ना, तो वो अंदर से ऐसे महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब रोम रोम में चला गया तो बाबा ने कहा दिल बुद्धि मन और तन जब चारों मिल जाएंगे ना, लगन में मगन हो गए ना, तो अब मंथन करो। मंथन माना जब मक्खन मंथन करोगे ना, महीनता से मंथन करो, क्या होगा तो मक्खन पैदा होगा। दिखाई नहीं देता मक्खन, पर मक्खन फिर दही में से निकल आता है। मक्खन क्या निकलेगा, पवित्रता रियल में फील होने लगती है, भाषण में नहीं, विजुलाइज नहीं करनी है, पवित्रता फील होने लगी। तो ये मुरली का मनन किया तो क्या हुआ, मक्खन निकला, कौन सा, पवित्रता का मक्खन निकला। ये पवित्रता ही पासपोर्ट है, वो वीजा है। तो वीजा बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे, ये मुरली से ही मक्खन, मुरली तो पासपोर्ट है। मुरली का मनन चिंतन अच्छे से किया, दिल से मंथन किया, तो पवित्रता आएगी। पवित्रता आएगी तो क्या होगा, वीजा मिल गया। किस डिग्री की पवित्रता आई, उतना बड़ा, उतना डिग्री का वीजा मिला। वीजा की बहुत क्वालिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का वीजा अलग होता है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग होता है, स्टेट गेस्ट का अलग होता है, और आम वीजा अलग होता है, होता नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का कैसे, एयरपोर्ट पे वेलकम, रेड कार्पेट वेलकम होता है, चेक करता है कोई चेक नहीं है। स्टेट गेस्ट होते हैं वहां भी कोई चेकिंग नहीं होती, आराम से जाते हैं ना, ये तो आम वीजा होता है। तो पवित्रता की डिग्री को उतना बढ़ाएं, राइट, तो उस पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी तो उतना वीजा मिलेगा। फिर टिकट कौन सी चाहिए, जितना पवित्रता और पवित्रता बढ़ती जाएगी, शांति, शांति माना पास्ट का विचार चलना बंद हो जाएगा, कोई विचार नहीं चलेगा, जो हो गया जो हुआ अच्छा हो, फुल स्टॉप। किसी ने धोखा दिया, तंग किया, गाली दी, इंसल्ट की, कोई मेरी महिमा करता, फुल स्टॉप। बस अपने सत्य में टिके, परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म करना, ये शांति है। भविष्य की चिंता नहीं, पास का चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में भी टिका, बाबा से बस कंबाइंड हुआ, समय कंबाइंड होकर मैं काम कर रहा हूं, इसको शांति। और सच्चा प्रेम, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, जब ऐसा बाबा के साथ रहने लगेंगे ना हर समय, तो हमें सबको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, कोई भी देदारी कैसा भी हो, क्योंकि उनके साथ ही हिसाब किताब पूरे करने हैं, और वही सत्य में आने वाले हैं। अभी जो तुम्हारी पत्नी है ना, पत्नी या पति है, ये बच्चे हैं, यही तुम्हारे साथी बनने वाले सत्य में, पता है आपको, कोई और नहीं बनने वाला है। आखिरी जन्म में ना ये मैं सोचना कि इसको छोड़ के आप चले जाएंगे, वही आपको एनओसी देंगे, संतुष्टता का सर्टिफिकेट, सारी दुनिया दे दे चलेगा नहीं, वही देगी या वही देगा, है ना, नहीं चलते तो भी उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। उन ऐसा व्यवहार में दिखाओ ना, अभी हम ज्ञान में तो चलते, मुरली तो पढ़ते हैं, फिर भी गुस्सा कर देते हैं, फिर भी खाने पीने में बाहर की इच्छा होती है, तो हमारी कमजोरी दिखते हैं, इसलिए हमारा फॉलो नहीं करते, हम मानते ही नहीं, हमें कहते फालतू का बस मुरली पढ़ते हैं, कर्म में दिखाई देता नहीं कुछ भी इनके। प्रैक्टिकल स्थिति हो तो लोग मानेंगे ना, वैसा वायुमंडल बनेगा, चुप हो जाएंगे आपको देख के, ये तो देवी आ गई, ये तो देवता है, इसके जो कहता है उसको वो सिद्ध हो जाता है, वो कहती है जो सिद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति बनाई है, इतने संकल्प सुनो हुए हैं। इस स्थिति बनानी पड़ेगी, ये कमजोरी है हमारी। अगर कोई हमें ज्ञान में, हमें हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते या मानते नहीं है, तो एक हमारी कमजोरी है, हम अंदर बार सेम नहीं है, सुना, लगन नहीं है हमें। जैसे पूजा पाठ करते हैं ऐसे हम मुरली पढ़ लेते हैं, अमृत वेला भी कर लेते हैं, आधा सोया आधा खोया, सुना, थोड़ी हार्ड बात कह रहा हूं, पर भी ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल है ना, नहीं तो ये हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो मंथन से मक्खन मक्खन निकलेगा पवित्रता, और पवित्रता से शांति आएगी। हर आत्मा अपना प्रभाव लेकर एक्यूरेट, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं, क्या क्यों कैसे नहीं, किसी बात का, किसी विकार का अंश भी नहीं, चिंता भी नहीं, भय भी नहीं, और निराकारी बन के निराकार बाप से कंबाइंड और ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहा हूं, तब फुल स्टॉप लगेगा, तब शांति आएगी, और तब प्रेम आएगा। जब प्रेम आएगा ना, हम तो हम टिकट मिल गए, हम बाबा की गोद में पहुंच गए, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जो बताया ना, इस जब हमने ज्ञान का मनन चिंतन किया ना, मंथन किया, तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं हमने देही यमानी स्थिति। ये मनन चिंतन मंथन की स्थिति को क्या बोलते हैं, देही यमानी स्थिति। इससे आत्मा स्थिति बनती है, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे अपने भाई भाई हैं, ये इसको बोलते आत्मनिष्ठी। अब पवित्रता आई, आत्मा का जूस निकला, पवित्रता शांति आई, प्रेम आया, इसको बोला आत्मनिष्ठी, इसको बोला साइलेंस। विचार जो 15 20 30 आ रहे थे ना, घटके कितने हो गए? चार हो गए, पांच छ आठ छ सात पांच चार हो गए, राइट। जब चार आ गए ना ड्रामा में, जो वो फुल स्टॉप लगा दिया, बस फिर हम पहुंच गए सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में। विश्व में सारा आत्मा को हर रोल के साथ एक्सेप्ट कर लिया, अब बाबा की गोद में पहुंच गए। अब बाबा कौन है? वर्षे के बाप के रूप में ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, संतुष्ट हो गए, इच्छा मात्र विद्या की स्थिति आ गई। इसको बोलते स्वीट साइलेंस। क्या बोलते? इसमें बाप का संबंध भी अनुभव किया, टीचर का संबंध के रूप में स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, वहां ही बैठ के स्वदर्शन चक्र बाबा गोद में फिराया, सतगुरु के रूप में त्रिकालदर्शी, वो क्या कहते हैं, सकारी अकारी निराकार की ड्रिल की है ना, बंधु के रूप में सारा बोझ दे दिया, लौकिक अलौकिक सखा के रूप में अपने मन की सब बातें उसे शेयर कर ली, साजन के रूप में सज्जन हमें दैवी गुण सजा दिया, सज्जन के रूप में उसने क्या बना दिया हमको, साजन के रूप में सर्वगुण संपन्न बनाया, उसके रूप में सारे मेरे विक्रम विनाश करता गया है ना, और मुझे 16 करोड़ संपूर्ण बनाता गया, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता गया, अहिंसा परमो धर्म बनाता गया। और जब संपूर्ण बन गए तो बाबा के अब बारिश बच्चे को अपना बाबा हमारा बारिश बन गया, हमारा बच्चा बन गया। तो इस तरह से एक एक संबंध की अनुभूति करोगे ना गहराई से बाबा की गोद में ऊपर, तो जब सर्व संबंध की अनुभूति करते हैं तो क्या होता है, जब संतुष्टता संपूर्ण आ गई ना, तब क्या होता है, तब आत्मा अशरीरी बनती। तो बाबा के साथ जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया ना, सर्व संबंधों का अनुभव कर दिया, भिन्न संबंधों का अनुभव कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस। और जब सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, आनंद, बस बाबा है और मैं हूं, लवलीन हो गए संकल्प, जैसे बस एक ही संकल्प रह गया, बस बाबा और मैं, खो गए, इसको बोलते आनंद, इसको बोलते डीप साइलेंस, इसी को विधेयी स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयी स्थिति। दो इसमें अतीन्द्रिय सुख और आनंद की, दोनों को मिला के विधेयी स्थिति, एक को स्वीट साइलेंस कहते हैं, एक को डीप साइलेंस कहते हैं। और जब एक ही संकल्प रह गया, बस बाबा, खो गए, अब बस बाबा को परख लिया है ना, सत्य को परखने की शक्ति आ गई, तीसरी आंख खुल गई, सही निर्णय करने की शक्ति आ गई, दिव्य बुद्धि एकदम एक्टिव हो गई, परम धाम में पहुंच गए, अशरीर बन के परम धाम में पहुंच गए, 0.9 हो गया, वहां से मांगे गए, इसको बोलते डेड साइलेंस। अब संकल्प चलने बंद हो गए, 0.9 हो गया, 0.8 और गहराई में गए, 0.8 0.7 पॉइंट। अब देखो 100 को हम अगर 1 से गुना करें तो कितना आंसर आया, 100 आया ना, 0.9 से करो तो कितना हुआ, 90 हो गया, 10% पाप भस्म हो गए, नहीं हुए, 0.8 से करो तो 20% पाप भस्म हो गए, 80 रह गए ना, 0.7 से करो तो कितना हो गया, 30% पाप भस्म हो गए, 0.5 से करो तो 50% भस्म हो गए, 0.1 से करो तो 90% पाप भस्म हो गए, यस। ऐसा करते पाप भस्म होने का मतलब क्या है, अब वही व्यक्ति मुझे गाली देता है घर में, तंग करते हैं घर में, वो ज्ञान में नहीं चलते, अब मुझे फील ही नहीं होता है, पहले फील होता था, दुखी हो जाते थे, अभी दुखी नहीं होते, मुस्कुराते रहते हैं, अशरीर बन के बाबा के साथ। और फिर उसे कहते हैं 0.1 आ गया, निराकारी स्थिति आ गई, तो 99% पाप कितना, 90% पाप खत्म हो गए, 0.1 में 90% खत्म हो गए, 10% बचे ना अभी, तो और बाबा के साथ निराकारी बन के निराकार पाप से कंबाइंड रहते, ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने लगते हैं, फॉलो फादर होने लगता है, तो एक्यूरेट फॉलो करने से क्या होता है, अभी हमारा एकदम एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को समान निराकारी, जैसे निराकारी साकारी, साकार सो निराकार, निराकार सो साकार, साकार में निराकार आ जाता है, निराकार में निराकार से साकार दिखाई देता, साकार से निराकार दिखाई देता, तो निराकारी सो साकारी स्थिति आ जाती है, जो ब्रह्मा बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप था, कभी साकार दिखता कभी निराकार, कभी साकार कभी निराकार, कभी अभी भी ऐसा ही फील होता है बाबा के साथ ना, तो वो बस फिर वहां से हम लोग 0.1 से 0.01 99% पाप कर्म भस्म हो गए ना। अब यहां से बीज रूप स्थिति शुरू होती है, पाप लगभग खत्म हो गए, एकदम पूरे पाप खत्म हो गए। अभी कुछ फर्क नहीं, हमारा आभामंडल इतना बड़ा हो जाता है, अब इतना बड़ा हो जाता है, हमारे जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी ना, कोई मारने भी आता था बाबा को, गाली देने कुछ वो कहने आता था, भूल जाते थे, हथियार गिर जाते थे उनके पैरों में आके, लाइट लाइट नजर आती थी। तो वो स्थिति बीज रूप स्थिति आने लगी। तो बस अभी हम 0.01, 0.001, 0.001, 0.501 क्या हो गया अभी, इसको बोलते बीज रूप स्थिति। बस बाबा है और मैं हूं, बाबा है और बाबा से कंबाइंड स्थिति है, और बाबा से कुछ करना नहीं है, भरपूर स्थिति है, सारे कलवेश को पूरे अपने आप ही सकाश चला, मुझे सकाश भेजने की आवश्यकता नहीं है कि सत्य सत्यता द्वापर कलर की भी, बाबा के साथ कंबाइंड बीज रूप में सारे कलवेश को सकाश चला। चलते फिरते बार बार इसमें टिक जाओ, बस आशीर्वी बन के परम धाम घर में गए और बाबा से कंबाइंड हो गए। वहां कुछ क्वेश्चन, वहां कोई प्रश्न नहीं चलता है, वहां कोई संकल्प नहीं चल रहे, अब मैं बाबा से करंट भेज रहा हूं, अब बाबा से सूक्ष्म बतन में इसमें करंट में उसमें सत्य उत्तरता की आत्मा करंट में, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बस संकल्प तो फिर मतलब आप सूक्ष्म बतन में आ गए या दुनिया में आ गए, संकल्प चला माना कहां पहुंच गए वापस, सत्य उत्तरता द्वापर कलयुग की आत्मा को सकाश भेज रहा हूं तो कहां पहुंच गए, नीचे ही आ गए ना, संकल्प चल रहे तो मतलब वहीं नहीं, वहां पर हो ही नहीं ना, ठीक है, उसमें खो जाओ, समा जाओ, आठों शक्तियां विस्तार को सार में समेटने की शक्ति, बस समेट के वहां चले गए और इतनी करंट अपने आप आ जाएगी, सहन करने की शक्ति आ जाएगी, कुछ भी हो, तन में हो रहा हो, मन में हो रहा, धन में हो रहा हो, परिवार में हो रहा हो, कुछ भी दुनिया में हो रहा, बम बज रहे हो, एटम बम बज जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी नहीं होगा, आपका आभामंडल इतना बड़ा नेचर, आपकी एनर्जी इतनी बड़ी हो जाएगी, आभामंडल इतना बड़ा, प्रकृति की एनर्जी आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, हिला भी नहीं सकती आपको, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो बस बाबा के साथ ऐसी स्थिति होगी, तो बस आपके साथ चलते फिरते घर वाले भी कहेंगे तो देवी है, तो देवता है ना, इससे तो हमारे पास के पास इसको कुछ कह ही नहीं सकते हम, वो आपके तब आपको फल, तब आपके, तब उनकी क्या होगा, उनको भी परमात्मा की पहचान होगी, तब वो समय को पहचानेंगे, समय कौन सा है, तब बदलेंगे। सुना बहन जी, वो हमारे भक्त हैं, कौन है हमारे, भले हमारे घर वाले हैं पर हमारे कौन है, भक्त हैं हमारे, हमारी प्रजा है, वो इस समय ज्ञान में नहीं चलते, हमारी प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, है ना, पर वो आएंगे आपके साथ ही, ध्यान रखना, आएंगे आपके साथ ही, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लेंगे जन्म दोबारा, है ना, है ना, याद है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, है ना, इसलिए ऐसी स्थिति बनाओ, कमी आपके हमारे अंदर है इसलिए वो परिवर्तन नहीं होते। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तब आपके द्वारा आपको सहन क्या होगा, सहन क्या होता है, समाना क्या होता है, सामना करना, उनको सहयोग करते रहोगे सारा टाइम, बस ऐसे फील होगा, उनके उनके भी विघ्न खत्म हो जाएंगे, उनके प्रॉब्लम खत्म, वो चाहे दुखी है उन पर रहम आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनके अवगुण दिखने चाहिए, रहम आना चाहिए, राइट, इतना निश्चय और विश्वास होना चाहिए बाबा पर, रामा पर और अपने आप पर, है ना, बेफिक्र बादशाह रूहानी बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र निर्भय धैर्यता और विश्व कल्याणकारी की स्थिति तब प्रत्यक्ष होगी आपकी, तब बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा, चलते फिरते उठते बैठते हमारा क्या होगा, जहां भी जाएंगे वहीं पे असलम बन जाएगा, तब फरिश्तों के रूप में साक्षात्कार होगा लोगों को। तो ये बीज रूप स्थिति बनेगी, ऐसी स्थिति बनानी है। मुझे याद है दादी, बड़ी दादी, लास्ट में बता दे, लास्ट में कहता हूं, बड़ी दादी थे, मैं उनके साथ बहुत, दादी ने मुझे बहुत भाग्य था मेरा कि दादी के साथ मैं उनके पर्सनल फिजिशियन के रूप में रहा, और दादी ने हमें कहा था कि भाई जब भी गुप्ता जी जब आते हो ना, रोज मुरली में आते 5 मिनट तो मेरे पास बैठ के ही जाना है, और मैं कभी कभी 15 मिनट आधा घंटा भी बैठता था, उनको कभी कभी चेकअप भी करना होता था। तो दादी ने एक दिन मुझे कहा कि गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं, मैंने कहा दादी तो इंचार्ज माना जो हेड द डिपार्टमेंट होते हैं, तो दादी ने कहा इंचार्ज माना जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, परमात्मा पिता से अपने आप को निरंतर चार्ज करता रहे, अपने अंदर ज्ञान अथवा सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां
आठों शक्तियों से भरपूर करता रहे, हीलिंग एनर्जी से भरपूर करता रहे, ज्वालामुखी योग अग्नि से भरपूर करता रहे, अपनी बुद्धि को चार्ज करता रहे, मन को चार्ज करता रहे, अपने संस्कारों को चार्ज करता रहे, अपने आंखों को चार्ज करता रहे सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से, नाक को, कान को, मुख को, अपनी स्किन को, पूरे रोम रोम को चार्ज करता रहे। मैं दादी का दादी के अंदर दादी को हाथ भी लगाओ ना, करंट लगता था, मतलब वैसे तो मुलायम ना एकदम रुई जैसे आते। दादी कई बार मुझे ऐसे करती थी प्यार से, बहुत प्यार से करती थी, जैसे तो फरिश्ता कोई हाथ जैसे कोई रुई रुई से मुझे छू रहा है ना, तो ऐसे प्यार से करती थी। और इंचार्ज का मतलब तुम अपने घर पर तो अपने शरीर के इंचार्ज हो, अपने बुद्धि के इंचार्ज हो, मन के इंचार्ज हो, संस्कारों के इंचार्ज हो, फिर अपने पांचों कर्मेंद्रों के इंचार्ज हो, फिर अपने शरीर के एक कोशिका के इंचार्ज हो, एक एक अंग के इंचार्ज हो, इसको चार्ज करो ताकि ये शरीर पुराना शरीर बड़े कटारा है फिर भी साथ देगा, प्रकृति साथ देगी। और फिर अपने आसपास जो आपके बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ऑफिस में काम करते हो, उनको भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, मुंह से बोलो नहीं, ज्ञान मत सुनो, उनको पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद के वाइब्रेशन जाते रहे, उनके भी विचार पुराने चलने बंद हो जाए, अपने सत्यों को ऐसा पहचान हो जाए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो चिंता खत्म हो जाए, वो भी सबको प्यार करना सीख जाए, प्यार के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, अत्यंत सुख के वाइब्रेशन फील हो उनसे, उनको सुख महसूस होना शुरू हो जाए, उनको आनंद महसूस होना शुरू हो जाए, उनके अंदर सत्य को परखने की शक्ति आ जाए, सही निर्णय करने की शक्ति आ जाए, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाए, विस्तार को सर में राई, पहाड़ को राई बनाने की शक्ति आ जाए, समेटने की शक्ति आ जाए, सहन करने की शक्ति उनके अंदर भी आ जाए, संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, तब हम इंचार्ज हैं, नहीं तो आउट चार्ज है। हम आग दिखाते हैं ना, गुस्सा करके लोग कंट्रोल करते हैं, आउट चार्ज है। तो क्या बनना, इंचार्ज क्या आउट चार्ज? तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय क्या करना है, इंचार्ज। अगर बीच रूप स्थिति को पाना है ना, विश्व महाराजन बनना है, बनना है विश्व महाराजन, दास दासी बनने वाले हाथ उठाओ, प्रजा बनने वाले हाथ उठाओ, नहीं बनना प्रजा, प्रजा तो अच्छी है ना, वहां की बहुत अच्छी है, सबका प्रजा का भी महल होगा, नहीं होगा। राजा बनने वाले हाथ उठाओ, राजा रानी बनने वाले, इतने सारे बनेंगे तो प्रजा कौन बनेगा, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, नहीं नहीं ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा, बनना है। देखो बड़ी दादी क्या करती थी, गुप्ता जी जैसे मैं आपसे बात करती हूँ ना, दादी के वहां पे ना मधुबन पांडवन में एक वहां पे जैसे हम जाते ना चांदनी चौक होता जहां से अंदर जाते, जानता दादी का डाइनिंग था, वहां पे ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी हुई थी, तो दादी कहती गुप्ता जी मैं इससे बाबा से ऐसे बात करूं जैसे आपसे बात करती हूँ। दादी थक जाती थी, टोली टोली देते ना ओम शांति में, दो दो हजार लोगों को टोली देते थे, 2500 लोग बैठे होते सबको अपने हाथ से टोली, हम कहते दादी हम दे देंगे, आप एक बहन पकड़ा देगी आपको टोली देते, नहीं दादी अपने हाथ से उठा के देगी। मैं कहता दादी मैंने ऐसे 2000 पर करके देखा मेरा हाथ ही जाम हो गया। तो दादी कहती आप थकती नहीं दादी, आप कहती जब मैं थक जाती हूँ बाबा मेरी मालिश कर देता है। ऐसे जब हार्ट का प्रोग्राम था एक बार, तो मैंने कहा दादी आपको मैं बहुत थक गया था, शायद दिन में भी पेशेंट देखता रहा, रात को भी देखता रहा, क्योंकि हार्ट के पेशेंट साथ वाले भी होते हैं, प्लस हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे, तो मेरे को बिल्कुल आराम नहीं मिला। 3 बज गए सुबह, शायद सोया नहीं, दिन में भी सोया नहीं, रात को 3 बज गए सुबह, तब पेशेंट देख के आया था, ऐसे बैठा मेरे को सारे शरीर में दर्द हो रहा था, बहुत जोर से सिर में भी दर्द, हाथ पैर आंखें पकी जैसे लग रही थी, हाथ पैर में दर्द होता बहुत। तो मैंने कहा ऐसे ही बाबा का चित्र लगा, मैंने बाबा आप आज तो इतना थक गया, तो खुशी नहीं होगा, जैसे अभी अमृत वाला योग भी कराना है, सब करना है, फिर साधन क्लास भी करानी है, सब काम भी करने हैं, आज तो कुछ भी काम नहीं होगा। फिर मुझे याद आया बाबा का, दादी का, दादी कहती थी ना बाबा जब थक जाते हो बाबा मेरी मालिश करता है। मैंने बाबा आप दादी की मालिश कर सकते, मेरी नहीं कर सकते हो, ऐसे ही मैंने बाबा से बात कर रहा हूं। तो तभी मुझे अचानक कुछ होना शुरू हुआ, यहाँ पे सिर में कुछ होना शुरू हुआ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अंदर अंदर कुछ होना शुरू हुआ, अंदर से ना अंदर सारे शरीर में ऐसे ऐसे होते, मैं समझता हूँ 10 सेकंड में लगे होंगे, सारे शरीर में एकदम ऐसा हो गया फूल जैसा शरीर हो गया, एकदम सारे शरीर की मालिश हो गई। और मैं एकदम फ्रेश हो गया और फिर थोड़ी देर मेरे को बुलाने आ गया, फिर उसको देखने चला गया, सारा दिन काम किया, जरा भी थकावट नहीं हुई, फील ही नहीं हुआ थकावट। तो बाबा हमारा सब कुछ हमारे साथ है, हर समय बाबा कहते हैं मैं हर समय हर जगह हर कर्म में सर्व संबंध से तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ मुझे यूज करना सीखो। तो कर्मातीत बनना है तो बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है, हर समय बाबा के साथ कंबाइन रहो और सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइन रहो। किसी भी देहधारी में बुद्धि मत लगाओ, किसी वस्तु में बुद्धि मत लगाओ। एक बात लास्ट में बताता हूं, टाइम हो गया, एक बात बताता हूं। एक है देखने का सुख, एक है पढ़ने का सुख, एक है सुनने का सुख, एक है बोलने का सुख, एक खाने का सुख, एक सूंघने का सुख, कुछ छूने का सुख। जितना इंद्रियों के सुख में रहोगे ना, बीमार होते जाओगे, ये शरीर बेकार होता जाएगा, शुगर बढ़ती जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, घुटने खराब होते जाएंगे, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी, दिमाग मेमोरी कम होती जाएगी, राइट। और जितना सुपर सेंसस सुख, सुपर सेंसस प्लेजर, अतिंद्रिय सुख, मैं आत्मा बस परमात्मा पिता के साथ अपने सूक्ष्म शरीर, माना सूक्ष्म शरीर माना मन, पवित्र बुद्ध दिल सच्ची साफ, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, और मन स्वच्छ, मन की लाइन, मन भी क्लीन और क्लियर। वो जब ऐसा होगा, मन रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर और दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और ये आदत अमृत वेला मुरली अटेंशन वेंटिलेशन और पावरफुल सुबह मतलब पवित्रता शुद्ध सात्विक भोजन सत्संग और देवी गुणों की धारणा, ये चार हमारे नियम चार मरे यानी हमारे संस्कार है, ये आदत बन जाए, ये हमारी ड्रेस बन जाएगी फरिश्ता स्थिति की, फरिश्ता सूक्ष्म शरीर की ड्रेस, इस सूक्ष्म शरीर के साथ और सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में समाये रहेंगे। तो ये जो ऐसी स्थिति बना दो, चलते फिरते उठते बैठते स्थिति बन जाएगी, तब हम क्या होगा, तब हम लगातार बाबा के साथ रहेंगे, राइट। तो याद रहे कौन कौन सा पासपोर्ट, क्या था पासपोर्ट, क्या था मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, सिमरन माना जो मक्खन निकला ना सुबह सुबह उसका सारा दिन सिमरन माना उसको कार्य में लगाओ, यूज करो, इमर्ज करो सारा दिन कार्य, सिमरन माना कर, कहते ना क्या कहते हैं सिमर समय सुख पाओ, उसको बार बार कार्य में लगाओ तो वो स्थिति बनेगी, सारा यूज करो उस अनुभव को, बार बार यूज करो, सर्व संबंध से पापा को यूज करो, तो इससे क्या होगा हमारे अंदर वो स्थिति बनती जाएगी। तो ये है, तो पासपोर्ट है मुरली और वीजा है पवित्रता और टिकट क्या है शांति और प्रेम सबके प्रति, विश्व में हर आत्मा के प्रति, तब बाबा के साथ अतिंद्रिय सुख का अनुभव, तब बाबा के गोद का अनुभव होगा, राइट, और आनंद का अनुभव होगा, सब शक्तियों का अनुभव होगा, परम धाम का अनुभव होगा, बाबा के साथ अशरीरी बन के परम धाम निराकारी बीज रूप स्थिति का अनुभव होगा। और वहां कितनी देर ठहर सकोगे, ठहरने के लिए क्या चाहिए, जितना अतिंद्रिय सुख आनंद में रहोगे, प्रैक्टिकल सर्वशक्तिमान की स्थिति होगी मास्टर की, उतना बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा कर सकोगे, उससे सर्व की दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं जो हैं वो मनी है, पैसा है मानने का, जितने सर्व की दुआएं लोगे उतना समय सूक्ष्म वतन में रह पाओगे बाप दादा के गोद में, उतना समय अश्री बन के परमधाम में रह परमधाम घर में रह पाओगे। तो इतनी सब की बेहद की निस्वार्थ भाव की दुआओं रूपी खजाना पैसा जमा करो तो हम कैसे बन जाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय हमें अशरीरी निराकारी और बीज रूप स्थिति का अनुभव होता रहेगा, और हम लाइट हाउस माइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, और फरिश्ते के रूप में चलते फिरते सारे विश्व में बाप को हम खत्म, हमारा अस्तित्व जैसे होगा खत्म हो जाएगा, हमारे मस्तक से चेहरे और चलन से बाप ही दिखाई देगा, तब आत्माएं परिवर्तन, तब समय की पहचान आत्माओं को आएगी, तब परमात्मा की पहचान आएगी, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति,
ओम शांति।